श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद दसवां अध्याय शीर्षक सृष्टि के विभाग श्लोक क्रमांक 30।
अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान मन्वंतराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पा विश्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना।
श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अब मैं मनु की संतति का वर्णन करूंगा। सृष्टा ब्रह्मा भगवान के रजगुण के अवतार के रूप में परमेश्वर श्री कृष्ण की शक्ति से प्रत्येक कल्प में अपने अमोघ संकल्प से विश्व व्यवहार की संरचना करते हैं। तात्पर्य, विश्व की अभिव्यक्ति श्री भगवान की अनेकानेक शक्तियों में से एक का प्रसार है। जैसा श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा गया है, जन्माद्यस्य यतः, सृष्टा और सृष्टि दोनों उसी परम चरम सत्य के प्रकाश हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि के विभाग शीर्षक नामक अध्याय 10 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ये अध्याय का शीर्षक है सृष्टि के विभाग और ये श्लोक इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और यहां केवल तात्पर्य 3 लाइन का है और ये आखिरी श्लोक होते हुए हम पूरे अध्याय को संक्षेप में आज इसका वर्णन करना चाहेंगे। इस प्रकार से हमें श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, सही ढंग से शुरू से अंत तक हरेक अध्याय को पढ़ना चाहिए। जब अध्याय समाप्त हो जाता है तो अध्याय का संक्षेप रूप में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और जैसे जैसे हम हर श्लोक पढ़ते हैं, एक के बाद एक श्लोक पढ़ते हैं, तो उनको हमारे किताब में, डायरी में, नोटबुक में हमें लिखते जाना चाहिए। उसके जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं उसका सारांश जो है वो हमें लिखते जाना चाहिए ताकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमारे किताब में भी उसका संक्षेप में सब कुछ हो। तो इसलिए हमने सोचा कि आज ये अध्याय में जो लिखा है उसका वर्णन करें। इस अध्याय में सारे सृष्टि का वर्णन है, किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है इसका सार इस अध्याय में दिया हुआ है। तो आज इस सार को हमने सोचा कि चार्ट के रूप में ऐसे बनाए हुए हैं, जल्दी जल्दी बनाए हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से नहीं बने हैं, लेकिन सोचा कि इसको आपको यहां लगाकर हम पढ़ाएं, जैसे कॉलेज में होता है। तो यहां पर इस अध्याय में, ये बहुत छोटा है ना, सबको दिखाई नहीं देता है ना, मेरे पास इतना ही बड़ा चार्ट था, इससे बड़ा नहीं था, नहीं कर पाए।
वी कैन पुट ऑन दैट
समथिंग, देन पीपल देयर विल नॉट बी एबल टू सी, नो, यू कैन स्टैंड फॉर सम टाइम लाइक दैट। ये भी एक तपस्या, इनको खड़ा रहना पड़ेगा, थोड़ा हाथ ऐसे करें। तो इस अध्याय में यह बताया गया है कि सृष्टि के दो विभाग होते हैं, पहला है प्राकृत सृष्टि और दूसरा है वैकृत सृष्टि। प्राकृत मतलब जो प्रमुख सृष्टि है और वैकृत मतलब जो बाद में होता है, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो वैकृत सृष्टि वो है जो महाविष्णु बनाते हैं और वैकृत सृष्टि वो है जो ब्रह्मा जी करते हैं। इसको कहते हैं महाकल्प, मतलब महाविष्णु के सांस के दौरान जो होता है, जो सृष्टि उस दौरान होती है उसको महाकल्प कहते हैं या प्राकृत सृष्टि। और वैकृत सृष्टि जो है ये ब्रह्मा जी के सृष्टि है, इसके भीतर भी दो विभाग हैं, एक है महाकल्प विकल्प। महाकल्प तो यहां हो गया, ये है विकल्प और कल्प। विकल्प मतलब ब्रह्मा जी का जन्म जब होता है, जो सृष्टि का निर्माण वो करते हैं उसको विकल्प कहते हैं, और ब्रह्मा जी के हर एक दिवस में जो सृष्टि का निर्माण करते हैं उसको कल्प कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के हर एक दिवस को कल्प कहते हैं। तो कल्प, विकल्प, महाकल्प, ये तीनों कल्पों का वर्णन इस ये 10 प्रकार के 10 श्रेणियों में है, 10 स्टेप्स बताए गए, 10 प्रकार के सृष्टि। तो प्राकृत और वैकृत सृष्टि। तो देखिए, प्राकृत सृष्टि में सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है, अब ये कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में भी आपको चार्ट बतलाएंगे, लेकिन ये संक्षेप में है। सबसे पहले महत्त्व का निर्माण होता है, किस प्रकार से होता है ये भी हम देखेंगे आगे चल के। फिर महत्त्व के निर्माण के पश्चात अहंकार निर्माण हो जाता है। अहंकार के साथ साथ में जो तीन गुण हैं सत्व, रजस, तमस, वो भी जागृत हो जाते हैं, और अहंकार और तीन गुणों के मिलन से फिर धीरे धीरे तन्मात्र और कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद में ज्ञान और क्रिया उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद में देवतागण उत्पन्न हो जाते हैं, और देवतागण के बाद जो है अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो ये है प्राकृत सृष्टि, ये सब इस अध्याय में बताया हुआ है, केवल इसका आपको सारांश दे रहे हैं। इसके बाद में वैकृत सृष्टि में स्थिर या अचर प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं, ये है ब्रह्मा जी की सृष्टि का निर्माण। फिर है निम्न श्रेणी के प्राणी, फिर मनुष्य, और उसके बाद देवतागण। ये देवतागण और ये देवतागण अलग हैं, ये एक नहीं है। तो देखिए, श्रीमद् भागवत जो है सबसे ऊंचा ग्रंथ है, निर्मत्सराणाम सताम, उन लोगों के लिए है जिनका हृदय मत्सर की भावना से शुद्ध हो चुका है। लेकिन अगर हमारा हृदय ऐसे शुद्ध नहीं है तो क्या उपाय है, ध्यान से पढ़ना, यही एक उपाय है। श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो इसको ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे इसका हर एक अक्षर जो है हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। तो जैसे विद्यार्थी एक अपने परीक्षा के लिए पढ़ता है, सब समझने का प्रयास करता है, उसको अच्छी तरह से लिखता है और बार बार पढ़ता है, और कोई संशय है तो उसके बारे में प्रश्न पूछकर अपने प्रश्न का जवाब लेता है, उसी प्रकार से हमें श्रीमद् भागवत का हर एक अध्याय पढ़ना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, और धीरे 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 से जैसे हम समझेंगे श्रीमद् भागवत को वैसे वैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। तो देखिए, अभी ये अध्याय के सारांश में 10 प्रकार के सृष्टियां बताई हैं। अब चलिए देखते हैं कि प्राकृत सृष्टि कैसे होता है। ये जल्दी में बना हुआ है, शायद आप पढ़ पाए कि नहीं मुझे पता नहीं है, आप देख सकते हैं। आई थिंक यू कैन गो लिटिल क्लोजर टू देम सो दे कैन, बट आई कहा लाइक दिस, दे कैन नॉट सी, नो
अच्छा प्राकृत सृष्टि
सबसे पहले अब देखिए है श्री कृष्ण, है ना, सर्व कारण कारणम अनादर आदर गोविंद सर्व कारण कारणम, सबसे पहले है श्री कृष्ण गोविंद, फिर उनसे आते हैं बलदेव, बलदेव से आते हैं फिर चतुर्व्यूह जो है संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, उनसे फिर आते हैं नारायण, फिर नारायण से आते हैं चतुर्व्यूह संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, फिर वो संकर्षण से महासंकर्षण से आते हैं महाविष्णु। तो ये महाविष्णु यहाँ है, सो हमने बीच के जो है वो बताए नहीं है, बलदेव और चतुर्व्यूहों को बताया नहीं है यहाँ पर। कृष्ण से आते हैं फिर महाविष्णु, और साथ साथ वहां प्रधान है। ये प्रधान क्या चीज है? प्रधान मतलब प्रकृति का अव्यक्त रूप, अनमैनिफेस्ट मोड्स ऑफ नेचर। मतलब जब ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण अभी तक जागृत हुए नहीं है, सुप्त अवस्था में है, अव्यक्त अवस्था में है, तो इसको प्रधान कहते हैं। अभी तक तीन गुण आए नहीं है, प्रकृति का निर्माण अभी तक हुआ नहीं है, अव्यक्त रूप में जब सब कुछ है भौतिक सृष्टि, तो इसको प्रधान कहते हैं। तो भगवान की और एक शक्ति है जिसको कहते हैं काल शक्ति, टाइम। तो ये तीन चीजें अभी हैं, महाविष्णु, प्रधान और काल। और महाविष्णु की दृष्टि है इसलिए भगवान की दृष्टि। जब भगवान की दृष्टि और काल शक्ति प्रधान के ऊपर आते हैं तो क्या बन जाता है? महत्तत्व बन जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। एक बार ये चीजें हम समझ लेंगे तो सारे सृष्टि का निर्माण कैसे होता है हम ये समझ पाएंगे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत में ये सृष्टि का निर्माण जो है कई अध्यायों तक होता है, दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में, पहले स्कंद में इसका वर्णन है, ग्यारहवें स्कंद में, तो कई जगह इस विषय का विषय को बताया जाता है। इसका मतलब है कि ये बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होता तो सुखदेव गोस्वामी इतने विस्तार में क्यों बताते इस विषय को। इसलिए इसे समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो महाविष्णु की दृष्टि जब प्रधान के ऊपर पड़ जाती है और साथ साथ काल भी, काल शक्ति भी प्रधान के ऊपर भगवान डाल देते हैं, तो फिर महत्तत्व बन जाता है। ये महत्तत्व क्या है? महत्तत्व मतलब जो आध्यात्मिक और भौतिक के बीच में जो तत्व है उसको महत्तत्व कहते हैं। महत्तत्व से सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। तो महत्तत्व ये चेतना और बुद्धि का जो उगम स्थान है, तो महत्तत्व से फिर हम देखते हैं अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अहंकार से तीन प्रकार की चीजें होती हैं, कारण, परिणाम और कर्ता। अब ये इसके बारे में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब साथ साथ सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। अब ये तीनों गुण अब जागृत होने लगते हैं धीरे 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 से। जैसे जागृत होने लगते हैं तो सत्वगुण जब का असर अहंकार पर पड़ जाता है, अहंकार का असर जब सत्वगुण पर पड़ जाता है तो दो चीजें उत्पन्न हो जाती है। अहंकार का असर रजोगुण पर उत्पन्न हो जाता है तो और दो चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। और क्या उत्पन्न हो जाती है चलिए देखते हैं। अहंकार का असर जब सत्वगुण पर पड़ जाता है तो देवता उत्पन्न हो जाते हैं और मन उत्पन्न हो जाता है। ये देवता कौन से हैं? ये हमारे चंद्र इंद्र वरुण नहीं है, ये अलग श्रेणी के देवता है। देखिए अभी तक ब्रह्मांड हुए, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ नहीं है अभी तक, ब्रह्मांड अभी तक हुआ नहीं है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी बाद में। ब्रह्मा ब्रह्मांड क्या होता है? अंडे के समान होता है ना, इसीलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो महाविष्णु के दिव्य शरीर से ये सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, लेकिन अभी तक ये अंडे तैयार हुए नहीं है, तो उसके पहले ही ये देवतागण है। ये देवतागण वो है जो सारे ब्रह्मांडों को इनकी रचना करेंगे, सारे ब्रह्मांडों के भीतर जो तत्व हैं उनका निर्माण करेंगे। और यह मन, मन की उत्पत्ति होती है। और फिर रजोगुण, जब अहंकार का असर रजगुण पर पड़ जाता है तो दो प्रकार की चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, एक है ध्वनि और दूसरे हैं इंद्रियां। अभी ध्वनि से ये सध्वनि क्या है, ये तन मात्र है ना। ध्वनि से सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, अब हम देखेंगे कैसे उत्पन्न हो जाता है। सारे जो तन मात्र हैं और सारे जो पंच महाभूत हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब कैसे उत्पन्न होंगे वो भी हम देखेंगे। और यह इंद्रियां, इंद्रियां मतलब जो ज्ञानेन्द्रिय हैं और कर्मेन्द्रिय हैं, वो यहां उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए ये देखते हैं कि रजोगुण के माध्यम से सारे तन्मात्र और जो पंच महाभूत हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये ध्वनि से। तो ये ध्वनि याद रखिए, ये ध्वनि यहां से यहां शुरू करेंगे। तो आपको याद है पिछले चार्ट में हमने देखा था ध्वनि, तो ध्वनि है यहां। देखिए ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद गंध, इनको कहते हैं तन्मात्र, सेंस ऑब्जेक्ट्स। और फिर यहां है पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। कैसे इनका क्रमशः इनकी उत्पत्ति होती है ये यहां बताया गया है, ठीक है। और इनके लिए ये तीन चीजों की आवश्यकता है। हर एक स्तर पे जैसे जैसे क्रमशः इन चीजों की उत्पत्ति होती है तो इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। वो क्या है, एक है भगवान की दृष्टि। भगवान की दृष्टि के बिना कुछ नहीं हो सकता है। महाविष्णु अपनी दृष्टि प्रदान करते हैं और दृष्टि के साथ साथ धीरे धीरे सब उत्पन्न हो जाता है। भगवान की दृष्टि के साथ में यह है काल शक्ति, और काल शक्ति के साथ साथ है प्रकृति। तो ये तीनों चीजें जो है ये हर चीज में हर स्तर में इनकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि है ओंकार, ओंकार उत्पन्न हो जाता है ना, सबसे पहले ध्वनि होता है आध्यात्मिक ध्वनि। तो ध्वनि जो है ये आध्यात्मिक है, सब कुछ ध्वनि से उत्पन्न होता है। तो ध्वनि से आकाश की आकाश निर्माण होता है। आकाश के ऊपर जब भगवान की दृष्टि काल शक्ति और प्रकृति आ जाती है तो स्पर्श उत्पन्न हो जाता है। फिर स्पर्श से वायु उत्पन्न हो जाता है। अब वायु के ऊपर भगवान की दृष्टि काल प्रकृति आकाश इत्यादि सब आ जाता है तो रूप आ जाता है। और रूप से फिर अग्नि, अग्नि के ऊपर आकाश वायु भगवान की दृष्टि काल और प्रकृति सब लग जाते हैं तो फिर क्या उत्पन्न हो जाता है, स्वाद। अब स्वाद से उत्पन्न हो जाता है जल। अब जल के ऊपर आकाश वायु अग्नि और भगवान की दृष्टि काल प्रकृति सब मिलकर जब असर होता है जल के ऊपर तो गंध बन जाता है। और जब गंध से फिर पृथ्वी आ जाती है। इस प्रकार से जो पांच तन्मात्र हैं और पांच यानी पंच महाभूत हैं इनकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए कि हर स्तर में इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है, भगवान की दृष्टि काल शक्ति और प्रकृति। और साथ साथ जो इसके पहले पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है उनकी भी आवश्यकता होती है। और साथ साथ में जब ये सब बर्तन में मिल जाते हैं और फिर भगवान धीरे धीरे ऐसे उसको हिलाते हैं बर्तन में तो ये सारे जो एक के बाद एक के बाद सब अनेक चीजें आने लगती हैं। जैसे एक विशाल बर्तन में महाविष्णु रसोई बना रहे हैं, ये सृष्टि की रसोई बना रहे हैं, है ना। और बहुत बड़ा बर्तन है, सबसे पहले वो बर्तन क्या है, महत्तत्व। महत्तत्व बर्तन है जिसमें सब कुछ बन रहा है। इसके पहले वाला जो था वो देख लेते हैं, महत्तत्व ये बर्तन है जिस बर्तन में सारे पदार्थ हैं। महत्तत्व
या प्रकृति के दो रूप हो सकते हैं। एक रूप में वो जगह प्रदान करती है जहां सृष्टि की उत्पत्ति हो जाए, बर्तन। लेकिन खाली बर्तन में आप कुछ रसोई कर सकते हैं, कुछ चाहिए ना पदार्थ, वो पदार्थ भी प्रकृति से आते हैं। तो इसलिए ये प्रकृति, ये प्रधान के दो रूप होते हैं। एक में जगह मिल जाती है महाविष्णु जी को रसोई बनाने के लिए, सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए, और दूसरे में सारे जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ वहां वो बर्तन में मिलते हैं। तो पदार्थों को क्या करना होता है ना, जब पदार्थ में आप बर्तन में, खाली बर्तन में डालेंगे, फिर रसोई बनाते समय आप कुछ जल डालेंगे, कभी आप कुछ मसाला डालेंगे, फिर आप उसको हिलाएंगे, है ना, अनेक कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आप करेंगे। तो जैसे महत्त्व में बर्तन में आप ये प्रकृति, ये तीन गुणों रूपी पदार्थ अंदर हैं, अब इसको हिलाना है। कैसे हिलाते हैं वो फिर से इसमें जाते हैं। इसको बार बार पढ़ने से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि अभी जब बता रहे हैं कि पूरी चीज समझ में न आए, लेकिन बार बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। नहीं, ये नहीं, दूसरा। तो देखिए, जब अहंकार उत्पन्न हो गया, धीरे धीरे जब महाविष्णु जी बर्तन हिला रहे थे, ऐसे अपने बर्तन हिलाना कैसे, हम जो चम्मच से हिलाते हैं ना, तो महाविष्णु जी अपने काल शक्ति, अपने दृष्टि से हिलाते हैं। हमें बर्तन में कुछ करने के लिए स्पर्श करना पड़ता है, चम्मच से कुछ चीजों से हमें हिलाना पड़ता है, बर्तन के अंदर के पदार्थ हैं। लेकिन महाविष्णु केवल अपने दृष्टि से और अपने काल शक्ति से सब कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हो जाता है, फिर अहंकार के साथ में जो तीन गुण होते हैं, और धीरे धीरे से फिर अहंकार से जब रजोगुण रूपी अहंकार जो है, फिर उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ध्वनि बर्तन में आ गई, अब ध्वनि को फिर से हिलाना है। देखिए, बर्तन के अंदर पहले जो पदार्थ बने हुए हैं वो पहले से है ही, अहंकार है, प्रकृति है, तीन गुण हैं, सब हैं। और इसके साथ साथ अभी सबसे नया पदार्थ बन गया बर्तन के अंदर, और वो क्या है, वो है ध्वनि। अब ध्वनि को बनाने के लिए और आपको बाहर से मसाला डालना पड़ रहा है, और वो क्या है, भगवान की दृष्टि, काल। साथ साथ प्रकृति तो है ही बर्तन के अंदर, ठीक है। तो सब फिर से आप मिला रहे हैं, जैसे जैसे मिलाते जा रहे हैं, अग्नि जल रही है, गर्म हो रहा है, अग्नि मतलब काल शक्ति, भगवान की दृष्टि। और आपने क्या क्या बना लिया, आकाश बन गया। और जैसे आकाश बन गया तो फिर भी और मसाला डालना पड़ रहा है, और अग्नि डालनी पड़ रही है, और हिलाना पड़ रहा है। तो जो भी बर्तन के अंदर था वो तो है ही, साथ साथ भगवान की दृष्टि और काल शक्ति फिर से हिला रहे हैं। फिर क्या उत्पन्न हो गया, स्पर्श। स्पर्श से खुद ब खुद अग्नि उत्पन्न हो गई। अभी जैसे अग्नि उत्पन्न हो गई तो धीरे धीरे से वायु, वायु, वायु उत्पन्न हो गया। तो वायु से साथ साथ फिर भी भगवान की दृष्टि और काल शक्ति फिर वो चल रहा है। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्रमशः रूप, अग्नि, स्वाद, जल, गंध, पृथ्वी सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए, हर स्तर पे भगवान की दृष्टि और काल शक्ति की आवश्यकता है। और हर स्तर पे जो उस स्तर के पहले जो पदार्थ बने हुए हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। और सब एक बर्तन में। देखिए, आप अगर एक भोजन बनाना चाहते हैं, अगर सब्जी बनाना चाहते हैं, चपाती बनाना चाहते हैं और दही बनाना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग बर्तन में बनाना पड़ता है ना। लेकिन महाविष्णु जी एक बर्तन में सारे पदार्थ बना लेते हैं और फिर भी उनको अलग अलग कर देते हैं। अब धीरे धीरे से क्या हो रहा है, पहले था प्रधान, प्रधान में सारे चीजें अव्यक्त थी। जैसे महत्त्व आ जाता है, अहंकार आ जाता है, धीरे धीरे जो नाना प्रकार के तीन गुण हैं, पदार्थ हैं, धीरे धीरे से अलग होने लगते हैं, और जैसे जैसे अलग होने लगते हैं उनका अलग व्यक्तित्व प्रकट होने लगता है। अब धीरे धीरे आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये ध्वनि है, हाँ ये रूप है, ये स्पर्श है, ये स्वाद है, ये गंध है, ये आकाश है, ये वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। ऐसे अलग अलग से आप इसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं, अलग अलग होते हुए भी एक ही बर्तन में है, प्रधान या वो महत्वपूर्ण के बर्तन में अभी तक सब हैं, लेकिन सब अलग अलग इनको आप पहचान सकते हैं। और धीरे धीरे फिर ये जब चीजें हो जाती हैं तो फिर ये वाला करिए, ये वाला सेकंड दिस वन द वन विद द नाइन, हाँ ये देखिए, ये जो देवता हैं, फिर ये देवता जो हैं वो सारे ब्रह्मांडों को बनाते हैं इन पदार्थों को लेकर। जैसे जैसे पदार्थ बन गए तो पदार्थों को लेकर वो ब्रह्मांड बनाते हैं। जैसे एक बार अंदर की आपको आटा बन गया तो फिर आप आटे को निकाल कर आप फिर चपाती बनाते हैं, है ना? उसी प्रकार से पदार्थ बन गए, अब ये देवता गण जो है ब्रह्मांडों को बनाते हैं, उनके सात प्रकार के आवरण होते हैं ना, और आवरण एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बनाते हैं, और बीच में अंदर जगह है आकाश, तो धीरे धीरे भी सब बनाते हैं। तो हमने देखा कैसे महत्व बना था, अहंकार, तन्मात्र और पंच महाभूत बने थे, और इसके बाद में ज्ञान और क्रिया, इसके बारे में फिर से यहां देखते हैं। द अदर वन, या दिस वन जैसे ये ध्वनि से फिर हम आ गए, ध्वनि से तन्मात्र हुए और पंच महाभूत हुए, और यह इंद्रियां, ज्ञान मतलब ज्ञान से ज्ञानेन्द्रिय आए, और सकाम कर्म तो कर्मेन्द्रिय आए। ज्ञानेन्द्रिय हमारे कौन से हैं? ज्ञानेन्द्रिय आंख, कान, फिर नाक, जिह्वा और स्पर्श यानी हमारा स्किन, क्या कहते हैं स्किन को, त्वचा, ठीक है। ये पांच चीजें उत्पन्न हुई यहां से, ये हुई रजोगुण से, और ध्वनि भी रजोगुण से आ रहा है। ये सारे तन्मात्र और पंच महाभूत से रजोगुण से उत्पन्न हो रहे हैं, और यहां पे हमारे सारे इंद्रियां जो है कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय वो भी रजोगुण से उत्पन्न हो रहे हैं। तो पहले हुए ज्ञानेन्द्रिय और फिर कर्मेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं। क्या है वो कर्मेन्द्रिय? हाथ, पैर, आवाज, वॉइस, आवाज, और जननेन्द्रिय हमारे एनस एंड जेनिटल्स, ये पांच चीजों की उत्पत्ति होती है। तो धीरे धीरे अब फिर से इसमें आते हैं, इसलिए महत्व हो गया, फिर अहंकार, फिर तन्मात्र और पंच महाभूत, ज्ञान और क्रिया, इसका मतलब है ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, फिर देवता गण जो ब्रह्मांड बनाने वाले हैं, और फिर अज्ञान। तो ये छह चीज, ये अज्ञान मतलब तमोगुण, जो सारे प्राणियों को अज्ञान के अंधकार में डालता है। तो ये छह प्राकृत सृष्टि के छह वर्ग हुए, और इसके बाद में जब ब्रह्मांड बन जाते हैं तो फिर महाविष्णु हरे ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और फिर अनंत शेष के ऊपर में योग निद्रा में रहते हैं। उनके नाभि से कमल पुष्प आता है, उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और फिर ब्रह्मा जी जो सृष्टि का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं वैकृत सृष्टि। फिर ब्रह्मा जी बनाते हैं नाना प्रकार के योनियों को, नाना प्रकार की जीव जंतु हैं, ब्रह्मा जी उनका निर्माण करते हैं। देखिए ब्रह्मा जी के साथ में सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, सब बीज रूपी प्राणी हैं, बीज रूपी जो अनेक ग्रह हैं, लोक हैं, सब भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए हुए हैं। अब ब्रह्मा जी
क्या है? रसोई नहीं करता
को नहीं है, ब्रह्मा जी को केवल पदार्थों को एकत्र करके बनाना है, है ना? केवल एक के ऊपर एक डालकर उनको बनाना है। तो ब्रह्मा जी ने पहले सबसे स्थिर अचर प्राणी बना लिए, उसके बाद में निम्न श्रेणी के प्राणी, ये आपने पढ़ा इसी श्लोक इसी अध्याय में हमने पढ़ा सब है, उसके बाद में मनुष्य बने और मनुष्य के बाद में देवता। ये पिछले ही श्लोक में आपने देखा कि किस प्रकार से आठ प्रकार के देवता होते हैं, ये कल पढ़ा होगा आपने, है ना। तो देवतागण, अब ये देवतागण ओपन अप, यहां भी देवतागण है प्राकृत सृष्टि में और यहां भी देवतागण है वैकृत सृष्टि में। तो ये देवतागण और ये देवतागण अलग हैं, ठीक है। ये देवतागणों को ब्रह्मा जी बनाते हैं लेकिन ये देवतागण को महाविष्णु बनाते हैं, तो ये देवतागण अलग हैं। इस प्रकार से ये 10 विभाग होते हैं सृष्टि के, और इस अध्याय में संक्षेप में ये 10 चीजों का वर्णन किया हुआ है। तो अगर ये चार्ट हम अच्छी तरह से समझ लिए, तीन चीजें जो अभी बताई, तो सारे सृष्टि को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये कैसे हुआ। हो सकता है कि एक बार में हम ठीक से समझ न पाए, लेकिन बार बार से बार बार से इसको पढ़ने से, इसको भागवत का अलग अलग अध्याय में इसका कभी कभी अलग अलग रूप से वर्णन होता है, तो इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर पूरी तरह से समझे नहीं भी तो फिर भी कोई बात नहीं है, केवल इनको पढ़ने से, इनके बारे में सुनने से, समझने का प्रयास करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है। ये श्रीमद् भागवत है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, सही है ना। जब विद्यार्थीगण साधारण अपने स्कूल में किताब भूगोल गणित इत्यादि ये किताब इतने ध्यान से पढ़ते हैं, किताबों में नोट बनाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके बारे में, तो श्रीमद् भागवत के लिए हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। हमें तो इसको और भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसे साधारण उपन्यास की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे लोग ट्रेन में जाते हैं तो उपन्यास मैगजीन ऐसे पढ़ते हैं, वैसे श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ना है। श्रीमद् भागवत को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए और पूरा समझने का प्रयास करना चाहिए, साथ साथ में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए और बार बार हमारे नोट्स को पढ़ने चाहिए ताकि हम भूल न जाएं। इस प्रकार से हम श्रीमद् भागवत को हमारे हृदय में सदा विराजमान रख सकते हैं, और जैसे जैसे श्रीमद् भागवत का रस हम प्राप्त कर सकते हैं, वैसे वैसे हम सब ऊपरी जो लीलाएं हैं भगवान की वो समझ पाएंगे। भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती हैं, सृष्टि लीला और धाम लीला। सृष्टि लीला वो तीन पुरुष अवतार के माध्यम से करते हैं, महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये जो कार्य तीन करते हैं उनको सृष्टि लीला कहते हैं, और जो भगवान वृंदावन में, द्वारका में या नवद्वीप में इत्यादि जो लीला करते हैं उनको धाम लीला कहते हैं। तो अगर धाम लीला हमें समझना है, इसका रस का इसके रस की प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए वास्तव में हृदय शुद्ध होना चाहिए। इनका श्रवण करने से भी हृदय शुद्ध हो जाता है, लेकिन वास्तव में इसका रस प्राप्त करने के लिए हृदय शुद्ध होना आवश्यक है, और इसके लिए सृष्टि लीला को भी समझना, इसका सुनना, इसको पढ़ना ये आवश्यक होता है। इसलिए कृपया ये जब इन विषयों का विस्तार में वर्णन जब होता है श्रीमद् भागवत में, इसको ऐसा नहीं सोचे कि अरे इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लें और इसको समझने का प्रयास न करें, इसको नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इनके ऊपर भी ध्यान से हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? हाँ जी, नहीं एक मिनट, हाँ जी, अच्छा कौन सा? अच्छा
तो ये बीज रूप में उत्पन्न हुए, बीज रूप में, इसका मुख्य मतलब फल रूप में या उसका वास्तविक रूप नहीं आया, जो भौतिक प्रकृति का निर्माण हुआ है, तो इसमें यहाँ पर जीव की स्थिति क्या है, जीवात्मा कहाँ पर है, जीवात्मा कब प्रवेश करता है, जीव की स्थिति क्या है, और यहाँ पर देवता उत्पन्न हुए या मनुष्य, और ब्रह्मा जी का वास्तव में रोल कहाँ से शुरू होता है? क्योंकि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो बताया गया कि केवल चारों धुआं और अंधकार देखा, तो उस समय में ये सारे तत्व अगर भगवान के शरीर में है तो ये जो तत्व बने हैं, क्योंकि महाविष्णु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल गए, एक जीव की स्थिति क्या है, कब प्रवेश करता है, तो ये जो सारा बना है यहाँ पर, तो ये जो सारे बीज बने हैं, तो एक एक ब्रह्मांड में कई ग्रह है, पृथ्वी है, तो ऐसे कई ब्रह्मांड है, तो यहाँ पर बीज रूप में कई ब्रह्मांड हुए हैं या एक ही हुआ है? तो कृपया थोड़ा,
ठीक है, कई प्रश्न किए हैं, सबने सुने प्रश्न जो भी किए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये याद रखिएगा कि यहाँ तक प्राकृत सृष्टि है और यहाँ से वैकृत सृष्टि, ठीक है। प्राकृत सृष्टि क्या है? जो महाविष्णु ने बनाई है। वैकृत सृष्टि क्या है? जो ब्रह्मा जी ने बनाई है, ठीक है। अब ये दोनों चार्ट जो है, बाएं तरफ के दो चार्ट हैं, वो प्राकृत सृष्टि के बारे में है केवल। वैकृत सृष्टि का वर्णन इन दो जगह में नहीं है, केवल प्राकृत सृष्टि तक, यहां तक इनका वर्णन है। अज्ञान, देखिए अज्ञान ऊपर है तमोगुण के यहां, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पदार्थ बन जाते हैं, पंच महाभूत तन्मात्र इत्यादि सूक्ष्म रूप में होते हैं, जैसे जैसे ये पदार्थ बन जाते हैं तो महाविष्णु फिर ब्रह्मांड जो रहते हैं बीज रूप में, फिर इनके आवरण इत्यादि बन जाते हैं, और ये जो देवतागण हैं, ये देवतागण जो हैं, जिनके संख्या में 10 हैं, ये भी वर्णन है भागवत में, 10 संख्या में जो हैं, ये इन आवरणों को बनाते हैं और खुद आवरण में स्थित भी हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आवरण भी इन तत्वों से ही बने हुए होते हैं, जो हरेक ब्रह्मांड के आवरण होते हैं, 7 प्रकार के आवरण, और हरेक आवरण जो है अपने बाद वाला जो आवरण है उसके 10 गुना बढ़ता जाता है, ठीक है ना, ऐसे बढ़ता जाता है। तो यही तत्व है वो, लेकिन सूक्ष्म रूप में है, ठीक है। तो ये जो देवता गण है इनको बनाते हैं, इस आवरण को बनाते हैं धीरे 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 से, और जैसे ये सब बन जाते हैं तो उस समय जीव अभी भी एक प्रकृति में है। जैसे महाविष्णु अपना दृष्टि देते हैं, भगवान की दृष्टि महत्तत्व, ये जगह उस समय जब भगवान महत्तत्व में दृष्टि प्रदान करते हैं तो साथ साथ जीव, बीज रूपी जीव भी उसमें चले जाते हैं, ठीक है, और महत्तत्व में रह जाते हैं। अभी भी वो सूक्ष्म रूप में है, बीज रूप में है, अभी तक प्रकट हुए नहीं है, अभी तक जैसे हैं वैसे ही हैं। जब सारे ब्रह्मांड बन जाते हैं और फिर महाविष्णु अलग अलग अनंत को, जितने ब्रह्मांड हैं उतने गर्भोदक्षाय विष्णु हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हरे गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे वो जीवों को ले जाते हैं। तो सारे जीव महाविष्णु के पास होते हैं, लेकिन जब अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाते हैं तो ये जीवों का विभाजन हो जाता है, अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु के साथ में वो उनके दिव्य शरीर में रहते हैं, सूक्ष्म अवस्था में, निद्रा की अवस्था में, और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन उनका हो जाता है, विस्तरण हो जाता है अलग अलग ब्रह्मांड में, और वो गर्भोदक्षाय विष्णु के दिव्य शरीर में रहते हैं। और सारे जो जीव रहते हैं, जब वो कमल पुष्प, कमल की डंडी उनके नाभि से बाहर आती है तो बहुत प्रज्वलित रूप में आती है, प्रकाशमान रूप में, क्यों? क्योंकि सारे जीव जो है वो उसमें रहते हैं, तो ये जो कमल का डंडा रहता है वो बहुत प्रकाशमान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जीव होते हैं उसमें, जीव रूप से प्रकाशमान होता है। तो ये सारे जो लोक हैं, ग्रह हैं, जीव हैं, सब कुछ, सारे योनियां हैं बीज रूप में, सब उस कमल की डंडी में रहते हैं, और फिर ये ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी का जन्म जब होता है तो ये स्थान यहां से शुरू हो जाता है, वैकृत सृष्टि शुरू हो जाता है। यहां तक ब्रह्मा जी का कोई रोल नहीं है, ब्रह्मा जी का जन्म नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। हाँ, हाँ
सबकी स्थिति अज्ञान में है,
सब अज्ञान में है अभी तक। हाँ नहीं, भौतिक जगत का ही अज्ञान है क्योंकि वे अभी सोए हुए हैं। हाँ नहीं, देखिए ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया ना, ब्रह्मांड तो उत्पन्न हो गया, अब ब्रह्मांड के भीतर जो तीन भुवन हैं उनका उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। हाँ
हाँ,
हाँ नहीं गैप नहीं है, ठीक फिर से समझाता हूँ। एक बार ये सारे पदार्थ बन गए, सब चीजें बन गई, प्राकृत सृष्टि बन गई, ठीक है, सब ब्रह्मांडों का जो जो अंडे हैं वो बन गए, ठीक है, उनके साथ आवरण भी बन गए, अब अंदर गर्भोदक शय विष्णु भी चले गए, अपने योग निद्रा में आराम से है गर्भोदक शय विष्णु, ठीक है, उस समय ये सारे जो भी पदार्थ हैं सब गर्भोदक शय विष्णु के साथ में है। जिन पदार्थों से ब्रह्मा जी को वैकृत सृष्टि करनी है वो सारे चीजें जो भी ब्रह्मा जी को आवश्यक है सब गर्भोदक शय विष्णु के पास में है, और वो सारे चीजें कमल डंडी में चले जाती हैं। जीव हैं, ये सारे पदार्थ हैं, पंच महाभूत हैं, तन मात्राएं हैं, कर्मेन्द्रिय हैं, ज्ञानेन्द्रिय हैं, सब चीजें उस कमल पुष्प में डंडी में चले जाती हैं, ठीक है, तो सारे मटेरियल्स जो है ऑलरेडी हैं वहां पर। अब गर्भोदक शय विष्णु ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं, उन तत्वों से ही ब्रह्मा जी का शरीर बनता है, ठीक है। जब ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है तो ब्रह्मा जी को पता नहीं चलता है कि क्या है, कि सब जगह देखते हैं अंधकार ही अंधकार उनको नजर आता है, फिर उनको वो धुनी सुनाई देती है तप, कि तप करो, फिर तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद में अंदर से ही भगवान उनको ज्ञान देते हैं, और फिर ये ब्रह्मा जी कमल डंडी है उसके तीन विभाजन कर देते हैं, भू भुव स्वः तीन लोग बना देते हैं, और उसके बाद में तीन लोगों का फिर 14 भुवन में उसका फिर से विभाजन कर देते हैं, पाताल लोक अलग अलग 7 प्रकार के, ऊपर के फिर 7 प्रकार के लोग कर देते हैं, तो ठीक है। फिर ब्रह्मा जी का रोल यहां से शुरू हो जाता है, तो ब्रह्मा जी अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गर्भोदक शय विष्णु ने सारे पदार्थ प्रदान किए हैं, सारे चीजें हाथ में दे दी है, केवल इतनी सारे चीजें थी लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि क्या करना है इनके साथ में। जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को यहाँ एक बिल्डिंग के सामने लाया जाए, सीमेंट के लिए जो सामान है, चाहे स्टील है, सारे पदार्थ अलग अलग रूप में यहाँ दिए गए हैं, अब बताओ बिल्डिंग बनाओ, अब बेचारे कहे मुझे कुछ बिल्डिंग बनाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, मैं तो इंजीनियर नहीं हूं। जब इंजीनियर बन जाता है तो ज्ञान आ जाता है, फिर पता चलता है कि कैसे सीमेंट बनता है, फिर ईंट कैसे बनता है, ईंट के एक ऊपर एक कैसे लगता है, फिर कहां इलेक्ट्रिक फिटिंग जाएगा, कहां क्या जाएगा, वो ज्ञान आ जाता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के पास में सारे पदार्थ आ गए, लेकिन पदार्थों को कैसे एकत्र करके सारे सृष्टि बनाना वो ज्ञान नहीं था ब्रह्मा जी को, तो वो ज्ञान भगवान ने उनको अंदर से दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वो अंदर से ज्ञान दे दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने धीरे 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 से ये एक के बाद एक के बाद एक बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। हाँ नहीं, बाहर ब्रह्मांड बाहर बने हैं, हाँ हाँ हाँ, जब वे सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड महाविष्णु जी के दिव्य शरीर से बाहर निकलते हैं, बीज रूपी ब्रह्मांड है ही, और जैसे वे महाविष्णु के शरीर से बाहर निकलते रहते हैं वो बड़े होते जाते हैं, एक्सपैंड होते जाते हैं, ये ब्रह्म संहिता में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने तात्पर्य में समझाते हैं, बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे धीरे, और साथ साथ होने के साथ साथ में ये जो देवता हैं ये अपना काम कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे महाविष्णु से दूर चले जाते हैं वैसे वैसे ये सारे सृष्टि का निर्माण होते जाता है यहां तक। और फिर जब महाविष्णु अंदर सांस लेते हैं तब विनाश सब कुछ हो जाता है। ये सारी चीजें, ये सारा चक्कर जो है इधर से उधर, ये महाविष्णु के एक सांस में हो जाता है। फिर महाविष्णु सब कुछ अंदर अपने समेट लेते हैं और फिर बहुत लंबे समय तक वैसे ही रहता है। फिर जब महाविष्णु इच्छा करते हैं तो फिर से सब प्रकट करते हैं। जैसे एक स्पाइडर, स्पाइडर को क्या कहते हैं, मकड़ी, मकड़ी जिस प्रकार अपनी जाल फैलाती है और फिर अपने जाल को अंदर ले लेती है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने सारे सृष्टि को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बाहर करते हैं समेट और फिर अपने आप में समेट लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। हाँ, प्रश्न है कि जब ब्रह्मांड बाहर आते हैं तो उनका सबका प्रलय का समय एक है कि अलग अलग है। अब देखिए, हमारे छोटे से अनुभव से जब हम इतने बड़े विशाल विषय को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें यही गड़बड़ हो जाता है ना। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि महाविष्णु कितने बड़े हैं। कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक ब्रह्मांड कितना बड़ा है हम कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और ये हमारा जो एक ब्रह्मांड है, इतना छोटा ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांड से और जो ब्रह्मांड है बहुत बड़े हैं। हमारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है। एक छोटा सा ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो साथ में सब अनंत कोटि ब्रह्मांड कितने बड़े होंगे क्या हम कल्पना कर सकते हैं, नहीं। और ये एक ब्रह्मांड जो है ये महाविष्णु के शरीर के एक जो छेद है उसमें से निकला हुआ है, तो महाविष्णु कितने बड़े होंगे। तो सब अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं महाविष्णु के दिव्य शरीर से, तो कोई ब्रह्मांड यहां, कोई वहां, कोई वहां, कोई वहां, ठीक है। लेकिन यहां से वहां होते हुए कितना फर्क पड़ता है, आप समझ पा रहे हैं कि समय में ही कितना बड़ा अंतर हो जाएगा। यहां से यहां एक ब्रह्मांड यहां है, एक ब्रह्मांड यहां है, महाविष्णु के शरीर से इतना दूर है, लेकिन इतनी ही दूरी में कितने युगों का फर्क हो रहा है। साथ में जब एक सांस में सारे अनंत इतने सारे युग ब्रह्मा जी के 100 साल हो रहे हैं, इन 100 सालों में कितने युग बीत गए, कितने चतुर्युग बीत गए, और ये ब्रह्मा जी के और महाविष्णु के एक सांस में, ठीक है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो अलग अलग जगह में हैं, उनके चतुर्युग सब अलग अलग समय में होते होंगे अपने अपने जगह में। कहां कलयुग चल रहा है तो कहीं सत्ययुग चल रहा है, तो किसी ब्रह्मांड में त्रेतायुग चल रहा है, वो चलता रहेगा हर एक ब्रह्मांड में अपने अपने रूप में। लेकिन फिर सबका एक साथ में विनाश हो जाता है। महाविष्णु जी अपने अंदर सारे ब्रह्मांडों को समेट लेते हैं, ठीक है। तो किसी ब्रह्मांड में एक युग चल रहा है, किसी दूसरे ब्रह्मांड में और कोई दूसरा युग चल रहा हो सकता है। अब समझ पा रहे, इतना विशाल है, इतना विशाल। आप देखिए कि थोड़े ब्रह्मांड इधर उधर हुए तो फर्क तो पड़ने ही वाला है। वर्णन है, आप ब्रह्म संहिता में पढ़िए, ब्रह्म संहिता में इनका और ज्यादा विस्तार में वर्णन है। नहीं, वास्तव में इनके पहले भी तीन आते हैं, वो है विष्णु, हिरण्यगर्भ और शंभु। जो हिरण्यगर्भ है वो अलग अलग ब्रह्मा जीवों को बनाते हैं, और फिर वो जो शंभु हैं अलग अलग शिव जी को बनाते हैं, और ये जो तीन देवता हैं, जो विष्णु हैं, हिरण्यगर्भ हैं और शंभु हैं, वो इनको बनाते हैं, ये इन 10 देवताओं को बनाते हैं। और फिर ये 10 देवता जो हैं आगे चल के सारे ब्रह्मांडों के आवरणों को बनाते हैं इत्यादि। हाँ, एक मिनट बाद। हाँ,
ये जो सारी रचना हुई है, सृजन हो रहा है, प्रधान अथवा महत्व तो यही
होगा,
आध्यात्मिक रूप में
नहीं हो रहा है, एक ही बर्तन में, वही बर्तन में हो रहा है सब कुछ। प्रश्न है कि ये सब भौतिक जगत में हो रहा है, ये हुआ ही क्यों, ये सब चक्कर क्यों है? अच्छा प्रश्न है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, इसके लिए हम सब। जेल क्यों बनाते हैं, सरकार जेल क्यों बनाती है? कोई गुनहगार होने वाले हैं इसलिए बनाते हैं। तो भगवान जानते हैं कि ऐसे जीव अवश्य होंगे जो उनके आदेश का पालन नहीं करने वाले हैं, जो उनसे स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं। तो ये चक्कर ये सब उनके लिए, हमारे लिए बनाया है भगवान ने, कि हमारे लिए कोई जगह बने जहां हम जाकर झूठे भगवान बनने का प्रयास करें। और दूसरा उद्देश्य ये सब के लिए है कि ऐसे जो जीव हैं हम जैसे, जो यहां संसार में आए हैं, हम सहित मार्ग में चल के फिर से उनके पास चले जाएं आध्यात्मिक जगत में, इसके लिए बनाया हुआ है। माता जी आपका प्रश्न था। हाँ जी, हाँ ऐसे है, एक के बाद क्रमशः बनते हैं सब। नहीं नहीं नहीं, जिस इस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में बनते हैं सब, उसी क्रम से।
हाँ
हाँ, नहीं अलग अलग, एक के बाद एक के बाद एक, पहले ध्वनि, ध्वनि से हुआ आकाश, आकाश के साथ में भगवान की दृष्टि, काल, प्रकृति, सब इन चार चीजों को मिलन होकर स्पर्श बन गया। ठीक है, स्पर्श से वायु उत्पन्न हो गया, अब वायु, फिर आकाश, ध्वनि, स्पर्श, भगवान की दृष्टि, काल, प्रकृति, ये सब को मिलाकर रूप उत्पन्न हुआ। रूप से अग्नि, अब अग्नि के पहले जो भी उत्पन्न हुआ है, रूप, वायु, स्पर्श, आकाश, ध्वनि, भगवान की दृष्टि, काल, प्रकृति, इन सब को मिलाकर स्वाद उत्पन्न हो जाता है। फिर स्वाद से जल, फिर से वही बात, जल, जल से पहले जो भी उत्पन्न हुआ है उसके साथ में भगवान की दृष्टि, काल और प्रकृति, ये जल से फिर गंध उत्पन्न होता है और गंध से पृथ्वी। ये क्रमशः एक के बाद एक, एक ये फिर वो, एक ये, एक 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 के बाद एक हुई है। पहले एक तन्मात्र, फिर एक पंच महाभूत, एक तन्मात्र, एक महाभूत, इस प्रकार से उत्पन्न हुई उनकी। हाँ, बुद्धि वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होता है, बुद्धि भी रजोगुण से उत्पन्न होता है, और ये यहां इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन अहंकार की, ये जो अहंकार है इसका असर प्रकृति के तीन गुणों पर पड़ जाता है और इसकी वजह से नाना प्रकार के पदार्थ बन जाती हैं। फिर अहंकार रजोगुण से भी और ये बुद्धि भी बन जाती है। ये श्रीमद् भागवत में दूसरे और तीसरे स्कंद में इनका थोड़ा सा अलग से वर्णन पाया जाता है, तीसरे में भी थोड़ा अलग से वर्णन पाया जाता है, लेकिन रजोगुण से ही सब उत्पन्न हो जाता है। तमोगुण से वो अज्ञान रूपी अंधकार पैदा हो जाता है जिससे जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और सोचता है कि मैं प्रभु हूं, हम वो आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो इनके बहुत अच्छी है, तो डिटेल वाला प्रश्न है ये, गहराई में। ये वास्तव में इनके अधिष्ठाता देव भी होते हैं, ये प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव जो हैं, ये अलग अलग स्तर में मन है, बुद्धि है, इनके अधिष्ठाता देव हैं, भगवान है वो, स्वयं विष्णु तत्व है वो, उनके अधिष्ठाता देव बताए जाते हैं। हाँ जी, नहीं आज के विषय के ऊपर आप प्रश्न, आज के विषय जो भी चर्चा किया है उसमें। प्रश्न कि सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है? प्राकृत सृष्टि का दूसरा नाम है सर्ग,
और वैकृत सृष्टि का दूसरा नाम है विसर्ग। सर्ग विसर्ग, प्राकृत वैकृत एक ही चीज है, ठीक है। थोड़ा कठिन है ये, फिर भी आसान तो समझाने में कमियां हो सकती है, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।
तो यू लुक ब्यूटीफुल, और व्याघ्र स्माइल करेगा तो भागेगा, 15 से 15 सेंटीमीटर रहता। तो टू कैनन टीथ दे हैव गॉट बिग बिग क्लॉज, क्यों वो ऐसे पकड़ेंगे उसको बकरी को, ऐसा चीरने से वो एकदम ठीक हो जाएगा, एक ही में मर जाएगा, दैट इज हाउ इट इज। तो उसका इंटेस्टाइन हमसे बेटर इंटेस्टाइन लॉन्गर है, उसमें मांस रहेगा एक महीना भी, उसको कोई बिगड़ेगा तुम्हारे पेट में रहेगा तो तुम्हारा ये बीमारी हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, कुत्ता क्या खाएगा, बिल्ली क्या खाएगा, सब भगवान व्यवस्था किया ना, तो उस हिसाब से तुम खाओगे। क्या खाने का हमको? तरकारी खाने का है, दूध दही ये सब खाने का है, इसलिए तुमको भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम। बट एक बात और भी है इसमें, क्या है, वैसे जनरली इन प्रिंसिपल जो भी जीव का हत्या किया जाता है वो पाप ही है। इसलिए मनुष्य को भगवान ने क्या एक व्यवस्था किया, कृष्ण जी बोलते हैं तुम तरकारी रूप जीव को मारने के बाद, उसका कुकिंग करने के बाद उसको मेरे भोग में लगाओ, करेक्ट, मैं उस पाप को खा जाऊंगा, तुम खाना खाओ, प्रसाद तुम खाओ, पाप मैं खा जाऊंगा। इसलिए जो आदमी भगवान को भोग नहीं चढ़ाता है वो पाप को ही खाता है।
इसीलिए मुसलमान वो बकरी काटे चढ़ाते हैं क्या?
वो मालूम नहीं, वो तो उनको पूछना पड़ेगा।
भगवान तो एक ही होता है?
नहीं, भगवान एक ही है, क्योंकि सबका भगवान एक ही होता है। तुम अपना अपना अभी साउथ इंडिया में जाओ, एक मंदिर में गया, वो बोलता है क्या है, बोला मंदिर, इसको आरती होती है, बोला सुबह आरती होती है, मैं बड़ा भगवान को चाह देखूं, बोला हाँ देखिए, वो गेट खोला, अंदर देखा, वो भगवान कैसा है, एक आदमी है, कूलिंग ग्लास पहना हुआ, एक टोपी है, बोला ये तो मद्रास का चीफ मिनिस्टर था एम जी रामचंद्रन, मैं ये तो चीफ मिनिस्टर था, बोला वही भगवान है हम लोग के लिए। तो भगवान प्रत्येक आदमी अपना अपना भगवान इमेजिन करेगा, वो सब एक ही भगवान है, भगवान एक ही है, दैट्स अ फैक्ट, सबके लिए एक ही भगवान है, किंतु वो भगवान कौन है ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इसको सिस्टमेटिकली एजुकेशन लेना पड़ेगा, तभी आप समझोगे। जैसे भगवान है कृष्ण, ऐसा नहीं कि भगवान हिंदू गॉड है, नो, दैट्स बिकॉज हिंदू वर्शिप कृष्णा, इट डज नॉट मीन ही इज हिंदू गॉड, कृष्णा गॉड है, भगवान है, वो सबके लिए भगवान है, जिसने माना उसके लिए भगवान है, जिसने नहीं माना उसके लिए भगवान है, वो अलग बात। बट फैक्ट इज कृष्णा इज गॉड, दैट कैन बी प्रूव, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कृष्ण बोलते हैं गीता में, तुम जो भी खाते हो, मैंने जो विधि विधान दिया उसके अंदर तुम जो खाते हो वो मेरे को भोग लगा, उसके बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट्स नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट अनाचार है नशा करना, दैट यू सेड यू स्टॉप टी, सेकेंड अनाचार थोड़ा विचार करेगी याने बोलेगी अभी, सी यू थिंक ऑफ इट, बट इट्स अ फैक्ट। जब हमको माइंड में बैठ जाता है ना कि ये पाप है, तो हम दूसरे दिन ही छोड़ देंगे, जब तक ये माइंड में नहीं बैठता है तब तक वो पाप करता रहेगा। एवरेज आदमी, इंटेलिजेंट आदमी होकर भी वो अज्ञान में पाप करता है, किंतु ज्ञान मिलने से वो आदमी को पाप नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स इज एवरेज इंटेलिजेंट। सो अनाचार नंबर टू ये है। अनाचार नंबर थ्री क्या है? जुआ खेलना। जुआ खेलने का रेंज किधर से स्टार्ट होता है? लॉटरी टिकट से स्टार्ट होता है, लॉटरी टिकट, ताश खेलना, सट्टा खेलना, वीडियो गेम खेलना, वो सब गेम्स है। अब तो ये सुनो, आप